और बाबा ने इसका नाम दिया है कल्प वृक्ष। तो इस कल्प वृक्ष का बीज रूप कौन है? स्वयं शिव बाबा इस कल्प वृक्ष का बीज रूप। और ये वृक्ष कैसे है? उल्टा वृक्ष है, जिसमें बीज ऊपर है और पूरा जाड़ नीचे फैला हुआ है। समझने के लिए उसको सीधा रखते हैं हम। तो उसमें हम ब्राह्मण कहां बैठे हैं? इस वृक्ष में कहां बताया हुआ है ब्राह्मण्स कहां बैठे हैं? फाउंडेशन में, जड़ों में, जड़ों में बैठे हैं ब्राह्मण, तपस्या कर रहे हैं। जड़ें कहां होती? धरती के ऊपर, धरती के नीचे? धरती के नीचे होती है। बहुत गहरा राज है इसमें समझने का। धरती के नीचे होती है माना वो दिखाई नहीं देती है। इस मकान का फाउंडेशन जो बना है वो भी धरती के नीचे है, वो भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस मकान का ये इतना बड़ा हॉल बना है, ऊपर मंजिलें बनी है, अगर फाउंडेशन कमजोर हो तो इतना नहीं बन सकता। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो लोग 10-10, 20-20, 30-30 मंजिल तक बना लेते हैं। तो पूरे वृक्ष का फाउंडेशन हम है, तो हमें कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, समझना है इसको, कितना स्ट्रांग हमको बनना है, मजबूत रहना है, बहुत दृढ़ रहना है। अगर फाउंडेशन हिलेगा तो जाल क्या होगा? जाल भी हिलेगा। दूसरा गुप्त है, जड़ें गुप्त है, फाउंडेशन भी गुप्त है, और फाउंडेशन में बैठे हुए हम ब्राह्मण भी गुप्त है। आज दुनिया में कहीं छोटा सा चमत्कार होता है तो सोशल मीडिया के द्वारा सारी दुनिया में एक दिन में फैल जाता है कि यहां पे ये बात हुई, और लोगों की लाइनें लग जाती है वहां पे। और यहां 78 इयर्स हो गए, स्वयं परमात्मा पिता जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, वो स्वयं भगवान आके शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों को पता ही नहीं है। वो यही समझते हैं ये सफेद कपड़े पहन के क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये रोज सवेरे सवेरे जाते हैं और क्या करने जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। किनको समझ में आता है? जो ब्राह्मण है, जो फाउंडेशन में बैठने को तैयार है, वो भले पढ़े लिखे नहीं है फिर भी उनको समझ में आ जाता है। हैं? माताएं पढ़ी लिखी नहीं होगी, भाई कोई पुराने पढ़े लिखे नहीं होंगे, फिर भी उनको समझ में आ जाता है। लेकिन जो पीएचडी किए हुए हैं, श्री 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 हैं, डबल एमएड है, साइंटिस्ट हैं, उनको समझ में नहीं आता। इतना गुप्त रीति से बाबा कर रहा है। कभी कभी हम बच्चे चिंता में पड़ जाते हैं, अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। क्या हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे? हमारा तो पार्टी गुप्त है, और बाबा को प्रत्यक्ष होने में देर कितनी लगेगी? बाबा ने थोड़ा सा जलवा दिखाया और लाइनें लगनी शुरू हो जाएगी यहां, न हम पुरुषार्थ कर पाएंगे न हम आराम कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने अभी ये टाइम दिया हुआ है कि जब हम अच्छी तरह से अपने आप पर पुरुषार्थ करके अच्छे बन जावे। सेवा बाबा का सब्जेक्ट है, बाबा सेवा करवा देता है, हमको उसमें ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। हमको अटेंशन कहां देना है, खुद पर देना है कि हम तैयार हो जाए। क्यों हमको हमारे पर अटेंशन देना है, फिर वही जाड़ की बात आती है, हम जड़ में बैठे हुए हैं। हमारे एक एक ब्राह्मण का पूरा संसार बनने वाला है आगे चल के, हमारे भगत बनेंगे, हमारा साम्राज्य होगा, सब कुछ होने वाला है। अब वही जो कल बताया कि अपने आप को निश्चय करना है कि मैं जड़ में भी कहां हूं, जिसका कितना प्रभाव ऊपर निकलने वाला है पेड़ के रूप में, वो हमको निश्चय करना है। मुख्य जड़ हूं या साइड वाली जड़ हूं, ऐसे ही पड़ा हुआ हूं, हमारा ही एक 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 जड़ की एक एक ऊपर टहनी निकलने वाली है, उसका विस्तार होने वाला है ऊपर। कोई टहनी बहुत सुंदर होगी डाल डालिया, कोई बहुत सूखी हुई होगी, वो जड़ पर डिपेंड करता है। तो हमारा साम्राज्य बहुत अच्छा होगा या सूखा सूखा साम्राज्य होगा, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अभी संगम युग पर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर कितनी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई से कितनी इनकम कर रहे हैं। बाबा ने आज का कहा पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, तो हम कितनी कमाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के द्वारा, तो गुप्त है। और कल्प वृक्ष की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति था, गर्मी के दिनों में वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। बहुत पुराने समय की बात है, उस समय ये कार या बस ट्रेन आदि नहीं हुआ करते थे, पैदल जाते थे लोग। तो वो जा रहा था, जाते जाते सूरज सिर पर आया, दोपहर हुई, उसको प्यास लगने लगी, बेचैन होने लग गया, गर्मी बहुत थी, सारा सूखा सूखा एरिया था, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आगे उसको एक दूर से पेड़ दिखाई दे रहा था, बहुत घना पेड़ था। तो वो जल्दी जल्दी कदमों से उस पेड़ के पास पहुंचा और कहा, ओ भगवान कितना आपका शुक्रिया, जो ऐसी गर्मी में ये ठंडी छाया देने वाला पेड़ आपने मुझे दिखा दिया। और वो छाया में बैठ गया, बोले मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो अच्छा है। उधर से एक बैलगाड़ी वाला पानी लेके जा रहा था, तो इसने उसको बुलाया, उसने उसको पानी पिला दिया, खुश हो गया, चलो पानी मिल गया। फिर सोचा, सवेरे से निकला हुआ हूं, अभी तो भूख लगी है, अच्छा थोड़ा भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो दूसरा एक किसान अपने खेत से फल सब्जी आदि लेके जा रहा था, उसमें से उसने उसको बहुत अच्छे अच्छे फल सब्जियां दे दी, उसका पेट तृप्त हो गया। फिर बोले अब सवेरे से चलते चलते थोड़ा थक गया हूं, यहां कोई बिस्तर मिल जावे तो अच्छी तरह सो जाऊं ठंडी हवा में। तो वहां एक बिस्तर भी आ गया और वो वहां अच्छी तरह आराम करने लगा। फिर सोचा देखो कमाल है, मैं जो संकल्प कर रहा हूं सब पूरा हो रहा है, लेकिन ये है तो जंगल है, तो अगर कहीं शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या हुआ? शेर आ गया और उसको खा गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी संकल्प करते हैं वो आज नहीं तो कल पूरे होने ही है। तब आप सोचिए कि हमको कैसे संकल्प करने हैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, वो पूरे होने, आज नहीं तो कल पूरा जरूर होगा। हमको कैसे संकल्प करने हैं? किसी को दुख देने के या नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, सोचना ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ भी नहीं सोचना है। हमें श्रेष्ठ सकारात्मक आशावादी संकल्प करने हैं। मैंने जो कल भी बताया कि आज हमारे पास अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, वो दूसरों के कारण से नहीं है, वो हमारे अपने ही संकल्प बोल कर्म के कारण है। एक व्यक्ति है, डॉक्टर के पास जाता है, उसका ब्लड रिपोर्ट्स डॉक्टर देखता है, कहता है अरे आपका तो कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, शुगर भी बॉर्डर पर है, आपको तो 6 मास में शुगर की बीमारी हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो, 6 मास बाद वापस चेक कराना आप। एक व्यक्ति है जो ये सुनने के बाद यही सोचता है कि मुझे तो हार्ट की बीमारी भी हो गई है, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल की ये शुगर की बीमारी भी हो गई है। जो भी उससे मिलने आता है या जिससे भी वो मिलता है, मुझे तो शुगर हो गया है, मुझे तो शुगर हो गया है, और खाने पर ध्यान नहीं रखता है, जो भी आता है खा लेता है, और क्या कहता है, डॉक्टर ने बोला है 6 मास में मुझे शुगर हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला 6 मास में शुगर, वो चिंता और स्ट्रेस में रहता है। 6 मास बाद रिपोर्ट कराता है तो क्या होगा, उसका शुगर लेवल बढ़ गया होगा। वो दूसरा व्यक्ति है, जब उसको ही ये 6 मास की वार्निंग मिलती है तो वो सकारात्मक हो जाता है, बोला चलो अच्छा है समय से पहले मुझे पता चल गया, और वो निश्चय करता है कि मैं अपने स्वादेंद्रियों को नियंत्रण लाऊंगा और मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। पॉजिटिव संकल्प के साथ जीता है, न उसकी चर्चा करता है, और खाने पीने में भी पूरा अटेंशन रखता है, तो 6 मास तो क्या जिंदगी भर उसको कभी भी वो बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम ये याद रखें कि हम कहां बैठे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और हमारा हर संकल्प पूरा होने वाला है। संकल्प को जब संस्कार जो है ना, उसको ये पता नहीं होता है कि ये संकल्प मेरे लिए किया गया है या दूसरों के लिए किया गया है। संस्कार तो केवल उसका जैसे टेस्ट समझता है, उसका भाव समझता है संस्कार। जैसे आपने गुड़ खाया या शक्कर खाया या खजूर खाया, लेकिन जीभ क्या टेस्ट करती है उसका स्वीट, वो उसके मिठास टेस्ट करती है। तो उसी प्रकार से संस्कार केवल भाव समझता है। आपने कहा ना उसका बुरा हो जाए, तो संस्कार ये नहीं समझता उसका बुरा हो जाए, संस्कार ये समझता है बुरा हो जाए, और वो हमारा ही बुरा करता है सबसे पहले। आप संस्कार के लेवल पर सोचना, वो केवल भाव समझता है, वो उसका चाकू से बुरा हो जाए या तलवार से बुरा हो जाए या बम से बुरा हो जाए, वो भी नहीं समझता है उसे, लेकिन बस बुरा हो जाए और वो बुरा हो जाता है। शुरुआत हमारे से ही होती है। इसलिए हमको न स्वयं के प्रति न किसी अन्य के प्रति कोई भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। सोचना ही नहीं है नेगेटिव। एक भाई जो वो हठ योग करता था, उस हठ योगी को एक दूसरा व्यक्ति ने ऐसा बोला कि कल से तुम जब ध्यान में बैठो ना तो बंदर को याद नहीं करना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और दूसरे दिन वो व्यक्ति जब ध्यान में बैठा तो उसको क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? बंदर को तो याद नहीं करना था, उसको बंदर ही याद आता है। उसने क्यों कहा मुझे बंदर को याद नहीं करना है, बंदर को याद करने से क्या होता है, बंदर ने उसका क्या बिगाड़ा, बंदर ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं बंदर को याद नहीं करूं, बंदर तो मनुष्य के पूर्वज है। उसको बंदर पर पूरी कमेंट्री चल रही है अंदर, और उसको कहा क्या था, बंदर को याद नहीं करना। कोई भी नेगेटिव अगर हम शब्द भी बोलेंगे ना तो उसका मंथन चलेगा। इसलिए हमको नेगेटिव शब्द ही नहीं बोलने हैं। आप ध्यान रखना है गिर नहीं जाए, ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोले कि चलिए थोड़ा संभल के चलते हैं। नेगेटिव शब्दों को भी प्रयोग में नहीं लाना है, अपने शब्द डिक्शनरी में इसे नेगेटिव शब्द निकाल देना है। आपको पता है ना अपने सतयुग की डिक्शनरी में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं है, एक भी नेगेटिव शब्द नहीं है सतयुग की डिक्शनरी में। और वहां वही आत्माएं सतयुग में चलेगी जो संपूर्ण पॉजिटिव बनेगी। सतयुग में विमान कैसे चलेगा, बाबा ने क्या बताया, संकल्पों से विमान चलेगा। तो संकल्पों से आप कल्पना कीजिए, हम सतयुग में पहुंच गए अभी सभी और अपने विमान में बैठ रहे, विमान में बैठे और विमान के लिए संकल्प किया कि चलिए आज हमको महाराज के पास चलना है, और हमारा विमान ऊपर उठ गया और तेजी से चलिए, हमारा विमान और तेज चल रहा है, और उसी समय संकल्प आया कि ये विमान कहीं गिर नहीं जाए तो क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि संकल्प है, संकल्प से चलता है। तो जरा भी नेगेटिव सोचने की आदत होगी तो वो हो जाएगा। इसलिए जरा भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई नेगेटिव आके सुनाता भी है तो नहीं, ये सोने का बर्तन है, सोने के बर्तन में कचरा नहीं भरना है, ना नेगेटिव सुनना है ना नेगेटिव सुनाना है। बहुत अपने आप को संभालना है, बहुत संभालना है। वैसे तो बाबा ने हमारे ऊपर कवच बना के रखा है कि इस कलयुगी दुनिया में, संपूर्ण नेगेटिव दुनिया में भी हम बच्चे जैसे वो बिल्ली के पुंगरे की तरह सेफ हैं, फिर भी अपने आप को बहुत संभालना है। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से बहुत संभालना है, संग दोष से बहुत संभालना है अपने आप, तो हम सकारात्मक बन पाएंगे और तो मंजिल पर पहुंचने में कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।
मन ಶಾಂತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೌನದಿಂದಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಪೀಠವನ್ನ. ಹಾಗೂ ಮೌನದಿಂದಲೇ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶುಭವನ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನನ ಚಿಂತನೆ